शिक्षार्थियों, इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज हम बिहारी लाल के दोहों के बारे में बातचीत करेंगे। शिक्षार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया गया है चार कालखंडों में: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो बिहारी रीतिकाल के अंतर्गत एक प्रमुख कवि हैं और बिहारी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने श्रृंगार, भक्ति, नीति और प्रकृति से संबंधित दोहों की रचना की, जिसे बिहारी सतसई के रूप में संकलित भी किया गया। इसमें लगभग 700 दोहे हैं और इन दोहों में सांसारिक बाधाओं के निवारण के लिए प्रार्थना भी की गई है। तो दूसरी ओर रीति के बारे में भी, अर्थात प्रवृत्ति के बारे में भी बात की गई है। हम कहें कि रीतिकाल को एक नई दिशा दी बिहारी ने। उन्होंने श्रृंगार को एक व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया। आज हम कुछ दोहे उनके पढ़ेंगे तो उनके काव्य की कुछ विशेषताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि रीतिकाल में भक्ति के विभिन्न पक्षों को भी उद्घाटित किया गया है, उसकी झलक भी इन दोहों में आपको मिलेगी। उसके अलावा नीति परक, जैसे धन का के दुरुपयोग से क्या होता है, उसके बारे में भी इसमें चर्चा होगी। प्रकृति सौंदर्य के बारे में भी आप समझ सकेंगे। उसके अलावा रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता थी भाषा के स्तर पे। रीतिकाल की भाषा काव्यात्मक रही है, आलंकारिक रही है, तो उसकी छवि भी आपको यहाँ दिखाई देगी। आपके पाठ्यक्रम में जिन 7 दोहों को लिया गया है उनको हम पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। पहला दोहा है, कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुमहु लाग जगत गुरु, जगन्नाथ जगवाए। अब यहां देखें, भक्ति का एक नया रूप आपको दिखाई देगा। हर व्यक्ति भगवान को अलग अलग तरीके से याद करता है। वह कभी उसकी लीलाओं का गान करता है तो कभी आर्त स्वर में उसे पुकारता है, कभी उसका मित्र बन जाता है तो कभी उसे पति या प्रेमी के रूप में याद करता है। ये सभी भक्ति के अलग अलग सोपान हैं। जब भक्त भगवान से बराबरी के स्तर पर बात करने लगता है तो वो भगवान को उलाहना भी देने लगता है, और इससे पता लगता है कि भगवान से उसकी अंतरंगता, निकटता कितनी ज्यादा है। इस दोहे में हम देखें कि कवि कहता है कि मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूं, अर्थात कितने लंबे समय से अपने दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं, पर हे श्री कृष्ण, तुम मेरी सहायता नहीं करते, मेरे दुखों को दूर नहीं करते। सारी दुनिया के तुम गुरु हो, जगत के स्वामी हो, लेकिन लगता है कि तुम्हें इस संसार की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बटाता और अपनी प्रशंसा और प्रभुता का आनंद लेता रहता है, ऐसा लगता है कि तुम भी वैसे ही हो गए हो। अब आप देखें कि भगवान को किस तरह से मित्रवत व्यवहार कर रहा है कवि, जैसे लग रहा है।
मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिहारी जी ने अपने जितने भी दोहे हैं मोस्ट ऑफ उसमें भक्ति रस हो चाहे श्रृंगार रस हो, सर श्री कृष्ण की भक्ति वो किया है ना?
हाँ, श्री कृष्ण का उनके आराध्य देव श्री कृष्ण हैं।
मुझे भी ज्यादा दोहे तो याद नहीं थे, उनका एक ये भी दोहा था ना, मेरी बब बाधा हरो
राधा नागरी सोरी जातन की झाई पर
श्याम हरिद्युति।
ये
मुझे पर्टिकुलर अर्थ सर क्या है, मुझे प्लीज इसका अर्थ बताइए।
इसका अर्थ यह है कि हे श्री कृष्ण, मेरी दुखों को दूर कीजिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। आप राधा के पति हैं
जी।
जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होए, जिन जिनकी छवि पढ़ते ही श्याम हरे रंग के हो जाते हैं।
जी जी जी,
है ना,
इसमें श्रृंगार रस लिया गया है ना।
हाँ, श्रृंगार है और भक्ति का भी संयोग है
जी सर,
क्योंकि वो बाधाओं को दूर करने के लिए भी कह रहे हैं
जी सर।
तो ये बिहारी सतसई का पहला दोहा भी है।
हाँ सर, मैंने यही पढ़ा था इसलिए मुझे याद है ये।
हाँ
जी सर,
तो अभी जो दोहा मैंने बताया उसमें आप देखें कि किस तरह से भगवान से वो संवाद कर रहे हैं, जिस तरह से हम मित्रों से संवाद करते हैं कि तुम्हें भी आजकल की हवा लग गई है, तुम्हें जब प्रशंसा सुनते हो तो उस आदमी की सहायता करते हो और जो दुख में रहता है उसकी सहायता नहीं करते। अब ये मुहावरे का जो प्रयोग है इसको व्यंजना कहते हैं साहित्य में, हम सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं। अब हवा लगना मुहावरेदार प्रयोग है भाषा का, तो इस तरह से आप उसी को कहते हैं जिसके साथ आपकी आत्मीयता ज्यादा होती है। आप जीवन में सबसे सब कुछ नहीं कह पाते, मित्र में भी जो आपके बहुत निकट हैं उसको आप कुछ भी बोल देंगे तो वो बुरा नहीं मानता। तो यहाँ भी जो भक्त है वो सोचता है कि ईश्वर तो हमारे मित्र हैं तो उनको उलाहना देता है वो। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी आपको मिलेगा, श्याम और सहाय में, जगत गुरु में, जगन्नाथ जगवाय में, क्योंकि यहाँ सौ और जौ की आवृत्ति हो रही है। दूसरा दोहा लेते हैं, मकराकृत कोपाल कै कुंडल सोहत कान, धस्यो मनो ही घर समर ड्योढ़ी लसत निशान। अब यहां देखें कि प्रेम और श्रृंगार की भावना को जगाने वाले देवता का नाम कामदेव है, और आप जानते हैं कि कामदेव के बहुत सारे नाम हैं, जैसे मदन, रतिनाथ, अनंग, स्मर आदि। इस दोहे में आप देखेंगे कि स्मर नाम का प्रयोग किया गया है जिसको समर कह दिया गया है। आपको ये भी जानना चाहिए कि कामदेव को एक बहुत बड़ा धनुर्धर माना जाता है और उनको एक योद्धा के रूप में भी दिखाया गया है, और प्रत्येक मनुष्य और देवताओं को अपने बाणों से वो जीत लेते हैं। वे बाण चलाते हैं तो उनके बाण कोमल होते हैं, सुंदर होते हैं, सुगंधित फूल के समान होते हैं, इसीलिए उनका एक नाम मकर ध्वज भी है। तो इसी संदर्भ में इस दोहे की रचना की गई है। इसके अर्थ को देखते हैं पहले। श्री कृष्ण के कानों में मकर की आकृति के कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कामदेव ने उनके हृदय रूपी घर में प्रवेश करके उसे जीत लिया है, यानी उसने कृष्ण के हृदय पर अपना कब्जा जमा लिया है और उनके कान रूपी द्वार पर विजय का प्रतीक यह ध्वज लहरा रहा है। अर्थात नायिका के रूप सौंदर्य के विषय में सुनकर नायक के हृदय में उसके प्रति प्रेम का अंकुरण हो गया है। अब आप देखें, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन बहुत से कवियों ने किया है, और सूरदास को भी पढ़ा होगा शिक्षार्थियों आपने। सूरदास ने कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन और श्रृंगार का वर्णन बहुत ही व्यापक रूप में किया, लेकिन रीतिकाल में आते आते उस श्रृंगार का रूप बदल गया। अब यहां आप देखें कि कामदेव के संदर्भ में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है और यह बताने की कोशिश की जाती है कि उनका कुंडल जो है वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने उनके हृदय पर वास कर लिया हो, अर्थात हमेशा के लिए निवास कर लिया हो, और कान पर जो कुंडल लहरा रहे हैं वो लग रहा है कि ध्वजा पताका है। तो इस तरह की कल्पना करना एक कवि के लिए एक अद्भुत दृश्य है। आप जानते हैं कि कृष्ण के अवतार के रूप में उनकी व्याख्या रीतिकाल में की गई है, और रीतिकाल में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदना आपको दिखाई देगी, वह है नायक नायिका की। अर्थात कृष्ण को नायक के रूप में दिखाया गया है और राधा को नायिका के रूप में। तो यहां जो नायक का सौंदर्य वर्णन होता है उसमें कल्पना की जाती है कि उनकी आंखों को देखकर कैसा प्रतीत होता है, उनके कुंडल को देखकर कैसा प्रतीत होता है, इस तरह की कल्पना कवि करता है जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं करते हैं। तो उसे रूपक अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आपने अलंकार पढ़ा होगा, जब उपमेय और उपमान में अभेद की स्थिति हो अर्थात दोनों एक ही हो जाएं, तब रूपक अलंकार होता है।
हाँ सर, बिल्कुल, ये तो पढ़ा
हुआ है। हाँ, तो उसका यहाँ पे दृश्य दिखाई देता है। और मैंने जैसा बताया कि रीतिकाल में आपको हर दोहे में अलंकार की छवि दिखाई देगी, और उपमा अलंकार जहां मानो की कल्पना कीजिए, मानो ऐसा लगता है, जैसे यहाँ पे है धस्यो मनो ही है। अब यहाँ पे मानो आया तो उपमा अलंकार हो जाएगा। तो शिक्षार्थी, आप जब इन दोहों को पढ़ें तो अलंकारों की भी साथ साथ पढ़ाई करते चलें। तीसरा दोहा,
मैं आपसे एक दोहे के बारे में पूछना पाऊंगी, मुझे अपने बचपन में एक याद आ गया। एक कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बोराय
नर वा खाए बोराय। हाँ
सर, इसका भी प्लीज मुझे एक बार दोबारा से बताइए अगर आप। मुझे नहीं पता इस कोर्स पे है नहीं है।
हाँ नहीं,
पर मैं चाहती हूँ मुझे बताए क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे दोहे।
हाँ नहीं, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, और अभी मैं तीसरा पढ़ रहा हूँ और चौथा आपका यही आएगा।
हाँ जी, हाँ जी,
है ना। तो मैं उसकी व्याख्या भी करूंगा।
ठीक है सर, ठीक है।
तो तीसरा दोहा लेते हैं। जब जब वह शुद्धि कीजिए तब तब सब शुद्धि जाहि, आखिन आखी लगी रहे आंखें लागत नाही। अब यहाँ आप देखें कि बिहारी अपने प्रिय की याद के प्रभाव का वर्णन किस तरह से करते हैं। इस दोहे में बिहारी ने नायक या नायिका की याद में डूबे हुए नायक नायिका का वर्णन किया है। इसका अर्थ देखिए कि विरहग्रस्त नायक या नायिका अपनी सखी या सखा से अपनी मनोदशा का वर्णन करता है, और कई किस प्रकार करता है कि जब जब मुझे अपने प्रिय की याद आती है तो मैं अपनी सुध-बुध भूल जाती हूँ, यानी उनका स्मरण करते ही मैं अपनी सारी चेतना सारी सुध-बुध गंवा बैठती हूँ, मेरी आंखें उसकी आंखों में ही उलझी रहती है, अर्थात मेरा ध्यान उसकी आंखों में ही लगा रहता है, फलस्वरूप मुझे नींद भी नहीं आती है। यह अर्थ नायिका के पक्ष में है, इसी तरह का अर्थ आप नायक के पक्ष में भी कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखें कि मुहावरे के माध्यम से अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। यहाँ मुहावरे का प्रयोग है आंख लगना। आंख लगना का मतलब कि पूरी तरह से प्रेम में निमग्न हो जाना। और यहाँ पे यह दिखाया गया है कि प्रेमी प्रेमिका की मनोदशा इस प्रकार की है कि वे दोनों एक हो गए हैं। आंखें उसकी आंखों में उलझ गई हैं। अब इस तरह का चित्र देखिए रीतिकाल में आपको दिखाई देगा, जहाँ पे अलग अलग भाव सौंदर्य आपको बिहारी में दिखाई देंगे। और सामान्य तौर पे भी हम कहते हैं कि प्रेम का सबसे बड़ा उपादान आंखें होती हैं, प्रेम की शुरुआत आंखों से होती है। उसी पक्ष को कवि भी यहाँ पे बताना चाहते हैं कि दोनों की, नायक और नायिका की आंखें दोनों लगता है कि एक हो गई हैं। अब हम चौथे दोहे को लेते हैं, जो अभी आप कह रही थी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर या पाए बौराय। अब यहाँ देखिए कि संपत्ति अचानक किसी व्यक्ति को मिल जाए
जी,
तो क्या स्थिति होती है? वो तो उसे नशा हो जाता है संपत्ति का।
बिल्कुल सर।
और कवि का कहना है कि यह नशा मादक पदार्थों के सेवन के नशे से 100 गुना ज्यादा है।
हाँ सर, जो हमने इसका एग्जाम्पल लिखा था तो जो हमने याद किया था धतूरे और सोने का किया था एक, कि सोना धतूरे का जो वो होता है ना मिला दो तो बहुत बढ़ जाती है उनकी जो मादकता होती है। जैसे हम धतूरा खाने के बाद भी इंसान पागल हो जाता है और ना खाने के बाद भी हो जाता है, इस टाइप से मैंने एक एग्जाम्पल दिया था सर, मुझे अभी तक याद है ये चीज।
नहीं, यहाँ पे जो कनक कनक है
जी,
दोनों के अर्थ अलग अलग हैं
जी,
तो आप उन पे ध्यान दीजिए कि कनक शब्द में जो पहला अर्थ है वो तो सोना है
जी।
पहले सोना शब्द का मात्र एक धातु के लिए प्रयोग नहीं किया गया है
जी,
बल्कि वो धन दौलत के रूप में भी है
जी,
है ना। जैसे आप पुराने जमाने में जानते होंगे कि मुद्रा के रूप में सोने का इस्तेमाल होते था, सोने का सिक्का होता था
जी सर,
बाद में कागज का कागज की मुद्रा का चलन हो गया। तो यहाँ पहला अर्थ जो है सोने का है अर्थात संपत्ति का है, और दूसरा अर्थ धतूरे का है
जी सर।
धतूरा एक ऐसा फल होता है जिसके खाने से ही नशा हो जाता है
जी,
है ना
जी।
तो यहाँ कहते हैं कि एक को पाने से आदमी पागल हो जाता है और दूसरे को पाने से
जी,
है ना
जी सर।
तो इन दोनों की तुलना की गई है। पैसे में, पैसे की मादकता सभी लोग जानते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसकी क्या स्थिति होती है। तो इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है
जी सर।
धतूरे का नशा तो उतर जाएगा लेकिन पैसे का नशा कहाँ उतरता है?
वो नहीं उतरता, वो तो आपके अंदर अभिमान वाली फीलिंग पैदा कर देता है उसे पागल, तो इंसान इतना अभिमानी हो जाता है सब कुछ भूल जाता है।
हाँ, इसीलिए उसकी मादकता जो है सर चढ़कर बोलने लगती है
जी सर,
है ना। तो ये बताना चाहते हैं कि मादक द्रव्य थोड़े समय के लिए हमें बेहोश करते हैं
जी, जी।
लेकिन धन का नशा वो हमें खतरनाक के स्तर पे ले जा सकता है।
बिल्कुल सर,
और वो हमेशा बना रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि धन का नशा उतरता नहीं है।
नहीं उतरता सर, सही बात है। आप किसी भी नशे को उतार सकते हैं कुछ देर के बाद, लेकिन जो पैसे का नशा है वो नहीं उतर पाता है इंसान के दिमाग से।
हाँ, तो इस दोहे में मनुष्य के व्यवहार पर धन का गलत प्रभाव क्या पड़ता है ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है
जी,
है ना। और इसीलिए ये प्रसिद्ध भी है कि धन के प्रति जो आज आकर्षण है लोगों में
जी,
व्यक्ति को पहचाना भी उसी जाता है, जैसे कहते हैं कि स्टेटस सिंबल है कि आपके पास पैसा कितना है।
सच बात है सर।
हाँ, तो आप देखें कि रीतिकाल में ही कवि ने इसकी कल्पना कर ली थी है?
जी,
और सोने और धतूरे की तुलना करके और भी स्पष्ट हो जाता है ये।
सही बात है सर।
अगला दोहा है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनवय जात अजो वह या जमुना के तीर। आप जानते हैं कि कृष्ण गोकुल में सभी गोपियों को खुश रखते थे, बाद में गोकुल छोड़कर वो मथुरा चले गए और तब गोपियां दुखी रहने लगी, उदास रहने लगी। लेकिन कृष्ण चले तो गए लेकिन पुरानी यादें उनको हमेशा याद रहती हैं और वे यादें उनको खुश कर देती हैं। तो यहाँ दोहे में कोई गोपी अपने सखी से कहती है कि उस जमुना के तट पर पहुंचकर मेरा मन आज भी वैसा ही हो जाता है, अर्थात पहले जैसे कृष्ण के रहने पे हमें खुशी होती थी उसी तरह की खुशी आज भी प्राप्त होती है। वहां घने कुंजों की छाया अत्यंत सुखदायी लगने लगती है तथा सुगंधित वायु बहुत शीतलता प्रदान करने लगती है। अब आप देखें कि इसको आम जीवन में भी हम देख सकते हैं कि जिस जगह से हमारी सुखद स्मृतियां जुड़ी हुई होती हैं तो हम जब भी वहां जाते हैं तो वो सारी स्मृतियां ताजा हो जाती हैं, और वही स्थिति गोपियां यहाँ पे अपना व्यक्त कर रही हैं। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण ब्रज में थे और कुल मिलाकर कृष्ण के यहाँ होते हुए गोपियों का आनंद व्यापक स्तर पे था, गोपियां खुशहाल थीं, लेकिन कृष्ण के जाने के बाद भी उन्हें गोकुल में कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि कृष्ण यहीं पे हैं। वहाँ की हवा भी शीतल सुगंधित लगती है, वहाँ कुंजों की छाया है वह भी पुरानी यादें दिलाती है। तो यहाँ पे जो यमुना के किनारे का दृश्य दिखाया गया है, यह वास्तव में एक प्रेम की पराकाष्ठा है। जिस स्थान से आपका प्रेम होता है, जिस व्यक्ति से आपका प्रेम होता है, वहाँ हर चीज सुखद लगती है, आपको आपके मन में खुशहाली प्रदान करती है। और उसी को यहाँ पे बिहारी ने श्री कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यहाँ आप देखेंगे कि कृष्ण और गोपी जहाँ मिलते थे, उस जगह का दृश्य दिखाने का एक महत्वपूर्ण संदर्भ है, क्योंकि कृष्ण और गोपियाँ कहा जाता है कि ब्रह्म और जीव की प्रतीक हैं, और जीव जब ब्रह्म से मिलता है तभी वह आनंद की अनुभूति में होता है। उस भाव को यहाँ व्यक्त करने की कोशिश की गई है, और ये कहा भी जाता है कि अगर आप ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं तभी आपको परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। अंतिम दोहा लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरधी मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौ हनि हसे, दैन कहे नटी जाए। अब यहाँ देखें कि कृष्ण और गोपियों के बीच बहुत सारे प्रसंग आते हैं, और उन प्रसंगों से ये पता लगता है कि उनके बीच का प्रेम कितना प्रगाढ़ था, कितना पवित्र था और कितना दिव्य था। गोपियों को कृष्ण के साथ बात करना तो अच्छा लगता है, साथ ही उनकी बांसुरी को छिपा देने में भी उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, और वे बांसुरी को छिपा देती हैं और अपनी भौहों से मुस्कुराती हैं और वापस देने की बात कहकर फिर मुकर जाती हैं। अब ये जो नायक नायिका का, जैसे मैंने बताया कि पूरा एक साहित्य में संदर्भ चलता आ रहा है, एक परंपरा पूरी है, उसी परंपरा को यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से गोपियाँ श्री कृष्ण का की बांसुरी को चुरा देती हैं और किस तरह से वो आँखों से मना करती हैं और वो कहती हैं कि हम दे देंगे, उसके बाद मुकर जाती हैं। ये सब हाव भाव जो हैं वो एक तरह से उस पूरे दृश्य को खड़ा करते हैं। एक दोहा है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीरद दाग निदाद। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि प्रकृति चित्रण भी दिखाई देता है बिहारी में,
जी सर,
और यहाँ पे उसी चित्र को दिखाने की कोशिश की गई है कि सांप मयूर और बाघ और मृग हिरण
जी,
ये सभी गर्मी के दिनों में एक जगह पे आकर पानी पीते हैं,
जी सर,
क्योंकि प्यास ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्यास के बिना तो पानी के बिना तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी यह स्पष्ट किया गया है कि मुनि लोग जहाँ पे तपस्या करते थे, जंगलों में रहते थे, वहाँ पे जंगलों में पशु पक्षी भी रहते थे
जी।
और वे पशु पक्षी गर्मी के दिनों में एक जगह जाकर पानी पीते थे
जी।
कहने का यहाँ पे अर्थ यह है कि जब आप परम सत्ता से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, तो किसी तरह का भाव भेद नहीं रह जाता, किसी तरह का विरोध नहीं रह जाता। उसी अर्थ को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। जैसा कि मैंने बताया कि भाषा के रूप में बिहारी की बहुत महिमा रही है, उन्होंने दोहा छंद लिखा लेकिन अलंकारों का बेहतरीन प्रयोग किया, जिसमें यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, वक्रोक्ति, बहुत सारे आपको अलंकार मिलेंगे।
अलंकार, रस, सभी थे इनकी, जितने भी दोहे थे उनमें बहुत सारे रसों का भी समावेश था सर इसमें।
हाँ, यहाँ पे श्रृंगार रस की प्रधानता रही,
भक्ति रस
भक्ति, हाँ। भक्ति को भी रस के रूप में मान सकते हैं, भाव भी मानते हैं उसको
जी, जी, जी।
तो इन रचनाओं को पढ़कर शिक्षार्थियों, मुझे लगता है कि आपको ये मालूम हुआ होगा कि बिहारी की रचनाएं किस प्रकार की हैं, उनका रचना कर्म किस तरह का है, उनमें किन किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है, और हम चाहेंगे कि और भी बहुत सारी रचनाएं आप बिहारी की पढ़ें, जिससे कि प्रेम, श्रृंगार, नीति और भक्ति सारे भावों को यहाँ पे आपको आनंद लेने का मौका मिलेगा।